25 मार्च प्रशांत विहार जैन स्थानक। जिस रोग का कोई इलाज नहीं, प्रवचनकार जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज सा, कोई दवा नहीं, उसके रोगों की जलता है जो दूसरों की तरक्की देखकर। यह बीमारी गृहस्थों में ही नहीं, साधुओं में भी देखी जा सकती है। एक तपस्वी दूसरे तपस्वी के तप की प्रशंसा नहीं सुन सकता, एक वक्ता दूसरे के प्रवचन की प्रशंसा नहीं सुन सकता, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। धर्म भी कूट राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहा है। यही स्थिति गृहस्थ जीवन में है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका पड़ोसी या आपका भाई अगर पार्षद भी बन जाए तो आपका पेट दुखने लगेगा। अगर आपका भाई आपसे ज्यादा धनवान हो जाए तो आपके सिरदर्दी हो जाएगी। अगर आपके पड़ोसी की लड़की किसी अरबपति के घर के बहू बनने जा रही हो तो आपको परेशानी हो जाएगी। आप रिश्ता तुड़वाने में लग जाएंगे। इंसान की ये हरकतें ही उसे शांति से जीने नहीं दे रही है। जैनियों में यह बीमारी कुछ ज्यादा ही दिखती है। अगर कोई जैन चुनाव में खड़ा हो जाए तो उसे हराने वाले जैन ही होंगे, क्योंकि उन्हें ईर्ष्या है। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तब तक आप अपने जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ सकते। अपना परीक्षण खुद करें, देखें अपने आप को। अगर आपको अपने समानांतर व्यक्ति के विकास को देखकर दिल से खुशी हो तो समझ लीजिए आपका भी विकास होगा। किसी धनवान व्यक्ति को देखकर उसके पुण्यवानी के प्रति आपके मन में सम्मान भाव हो तो समझ लो आपकी उन्नति का समय आ गया है। अगर आप किसी के विकास से ईर्ष्या करते हैं तो ये कैंसर से भी खतरनाक कीटाणु है जो आपके भव भव बिगाड़ देंगे। शास्त्रों में छोटी सी बात आई है कि गुणिषु प्रमोदम, गुणवान व्यक्तियों के प्रति आपके मन में प्रमोद भाव हो। आपने सैकड़ों बार सुना होगा कि श्री कृष्ण वासुदेव मरी हुई सड़ी हुई कुत्तिया में भी अच्छाई ढूंढते हैं कि इसके दांत कितने अच्छे हैं। परिणाम स्वरूप कुत्तिया का तो कुछ हुआ या नहीं, पर श्री कृष्ण आने वाली 24 में 12वें अमम नामक तीर्थंकर बनेंगे। अच्छाई देखने मात्र से श्री कृष्ण का चरम विकास हो गया। तीर्थंकर से ऊपर कोई पुण्य प्रकृति नहीं है। गुण गाने एवं सुनने में आपका क्या बिगड़ रहा है? एक साल के लिए नियम ले लो कि मैं सबके गुण गाऊंगा। एक वर्ष बाद देखिए आपको सभी प्यार करने लगेंगे। परंतु पता नहीं हम आदत से ऐसे लाचार हैं कि निंदा करने में ही रस लेने लगते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। उनकी देश सेवा एवं बुद्धि इतनी अधिक तीव्र थी जो एक बार पढ़ते वो एक बार पढ़ने मात्र से उन्हें याद हो जाता। एक बार महत्वपूर्ण फाइल गुम जाने की स्थिति में उन्होंने उस फाइल को बोलकर नई लिखा दी, क्योंकि उन्होंने पहले एक बार पहले पढ़ा हुआ था तो वो उन्हें याद हो गई थी। सभी नेताओं को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। उनका अपनी नींद पर भी जबरदस्त कंट्रोल था। वे चाहते कि 20 मिनट नींद लेना है, 1 मिनट भी नींद अधिक नहीं आएगी। जिंदगी भर तक राष्ट्रपति भवन में लकड़ी के तख्ते पर सोते रहे। जिन्होंने हर एक में अच्छाई ढूंढी तो वो राष्ट्रपति पद पर सीधे सेलेक्ट हो गए। आप भी अपने भाई बहन दोस्त पड़ोसी सब में अच्छाई देखिए। सच्चाई हो, अच्छाई हो तभी सार्थकता है। जो ध्यान तप जब प्रैक्टिकल जीवन में न आए उसका कोई महत्व नहीं है। भगवान महावीर ने भी दया आचरण को महत्व दिया। तस उत्तरी के पाठ में ध्यान के लिए कहा गया है कि पावना कम्माना निग्धायन थाए थामी काउस्सगम, पाप कर्मों को निर्घात करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। ऐसे उत्कृष्ट कायोत्सर्ग करते समय भी अगर आपकी नज़रों के सामने कोई बिल्ली चूहे को पकड़ ले जा रही हो तो ध्यान छोड़कर पहले चूहे को बचाए फिर वापस ध्यान करिए। आपका ध्यान टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। अगर 4 लोगस का ध्यान चल रहा है, 2 लोगस का किया तो चूहे को बचाने के बाद बाकी 2 लोगस का ही करना रहा है, यानी कि आपका ध्यान टूटा नहीं। यह बात तस उत्तरी के पाठ में इव मय ही पाठिसी अर्थ का द्योतक है। बहुत समय पहले की बात है, संतंगा के सुप्रसिद्ध महात्मा ज्ञानेश्वर जी सुबह की पूजा अर्चना के बाद आश्रम के सामने बहने वाली नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ज्ञानेश्वर की नज़र नदी में डूबते एक बच्चे पर पड़ी। उन्होंने आव देखा न ताव और झट नदी में कूद पड़े। बच्चे को बचाकर जब वह बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे ठीक वहीं पर एक साधु ध्यान में मग्न था जहां वह बच्चा डूब रहा था। महात्मा ने साधु को आवाज दी। साधु ने आंखें खोली और महात्मा ज्ञानेश्वर को सामने पाकर तुरंत प्रणाम किया। महात्मा ने साधु से पूछा, वत्स, तुम क्या कर रहे हो? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं ध्यान लगा रहा था महाराज। महात्मा ने कहा कि क्या तुम्हारा ध्यान लगता है? उसने स्वीकार किया, महाराज जी, ध्यान तो नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है। ज्ञानी जी ने फिर पूछा, तुम्हें इस बच्चे की चीख सुनाई नहीं दी? इस पर साधु ने जवाब दिया, महाराज, सुनाई तो जरूर दी थी, लेकिन मैं ध्यान करने की कोशिश में लगा था। साधु की बात सुनकर ज्ञानेश्वर जी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने साधु को समझाया, तुम ध्यान में भला कैसे सफल हो सकते हो? ईश्वर ने तुम्हें किसी की सेवा करने का मौका दिया और यही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य भी था। यदि तुम इस कर्तव्य का पालन करते तभी ध्यान में भी मन लगता। यदि तुम्हें जीवन में आनंद पाना है, ध्यान में मन लगाना है, तो सबसे पहले ईश्वर के बगीचे को संवारना सीखो। साधु ने महात्मा के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, मेरी आंखें खोल दी, जीवन का सही उद्देश्य बता दिया। अगर आप मानव की सेवा नहीं कर सकते तो समूचा पूजा पाठ ध्यान साधना व्यर्थ है। हर मनुष्य उसी ईश्वर की छवि है जिसे पूजा पाठ करके वह प्रसन्न करना चाहते हैं। इंसान एवं प्राणियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। कई धर्म के ठेकेदार ऐसे भी होते हैं कि वे घर पर माँ बाप की तो सेवा तो नहीं करते और सुप्रसिद्ध समाजसेवी कहलाते हैं। पहले माँ बाप की सेवा करिए तो लक्ष्मी सरस्वती सब आप पर मेहरबान हो जाएगी। हमारे मोतीलाल जी, आशा जी चोरदिया को हमने इनकी माताजी की सेवा करते देखा है। इसी तरह अनिल जी, रेखा जी, सोनी और इनके भाई आदि को अपने पिता श्री फतेहचंद जी की सेवा करते देखा है। घर में सेवा पहले है, उसके बाद समाज की सेवा है, यही धर्म सिखाता है। जैसे पति पत्नी से अपेक्षा रखता है, वो जिंदगी भर पति की सेवा करती है, खिलाती पिलाती है। क्या कभी आपने भी पत्नी का सम्मान करना सीखा है? आचार्य श्री ने ओम प्रकाश जी को संबोधन करते हुए पूछ लिया कि क्यों ओम प्रकाश जी कभी लक्ष्मी जी को खाना खिलाया है? तो वो बोले, मुझे तो बनाना ही नहीं आता। लक्ष्मी वो देवी नहीं भाइयों, इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। यह हाल अन्यों का भी है, परस्पर सहयोग एवं सम्मान की भावना बनाइए। सन 1993 में चांदनी चौक का चातुर्मास संपन्न कर मैं आपके प्रशांत विहार आया था, क्योंकि उस समय यहाँ पर नाम के अनुरूप सुदर्शन संघ शास्ता परम पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज सा विराज रहे थे। उनकी दर्शन सेवा में यहाँ आए थे। इसी तरह एक बार और प्रशांत विहार आना हुआ, लेकिन गत 20 वर्षों बाद फिर आप सभी के आग्रह पर आना हो गया है। अधिक से अधिक धर्म लाभ लेने का प्रसंग है। धर्म प्रभावना 25 मार्च को सवेरे ज्यों ही आचार्य प्रवर आदि संतगण वल्लभ स्मारक से निकले, तभी जैन कॉन्फ्रेंस विहार सेवा दिल्ली प्रदेश के सदस्यों का एक दल विहार में यात्रा में चलने हेतु पहुंच गया। उनकी सुरक्षा और सक्रियता सराहनीय है। पूरे रास्ते साथ चले। प्रशांत विहार पहुंचने से पहले सभा के पदाधिकारी आदि अगुवानी करने हेतु सामने आए। आज के प्रवचन में आचार्य श्री ने कोई दवा नहीं उस रोग की इस विषय को मार्मिक तरीके से समझाया। पश्चात कर्म कार्यकत्री महिला रत्न श्री सरोज जी बेताला अपनी मधुर स्वर लहरियों में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। महामंत्री एवं दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी जैन ने आचार्य प्रवर के पधारने पर भव्य स्वागत किया। आज प्रवचन में एवं दिन भर लोगों का दर्शनार्थ आना बना रहा। आचार्य प्रवर के दर्शन पाकर चिर परिचित लोगों का रोम रोम पुलकित हो उठा, जिन्हें असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। आज शाम को रोहिणी सेक्टर 11 के पदाधिकारी श्री राकेश जी, सुशील जी, सुरेंद्र जी आदि अपने क्षेत्र की विनंती रखने पहुंचे। ऋषभ विहार आदि कई संघ पहुंचते रहे। आज शाम को सेक्टर 5 के प्रधान श्री रामनिवास जी एवं उनकी टीम ने आकर सेक्टर 5 पधारने की विनंती प्रस्तुत की। इसी तरह अन्य क्षेत्र के लोग भी अपनी अपनी विनंती करने आ रहे हैं। दिन भर भक्तों का आवागमन जारी रहा। कोलकाता से नररत्न श्री राकेश जी सेठिया एवं नररत्न श्री राजेश जी घोडावत भी गुरु चरणों में दर्शन एवं तत्व चर्चा के लिए पहुंचे। 26 मार्च को प्रशांत विहार में प्रवचन एवं आचार्य प्रवर के दिल्ली पधारने का स्वागत तथा मुमुक्षु महिला रत्न श्री नीलिमा जी का भव्य अभिनंदन किया जाना है। आप सभी इस कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर पधारकर प्रवचन श्रवण एवं दीक्षा अनुमोदना का लाभ लिरावें। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।